आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हिमांशी और मैं एक BAMS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके साथ इससे पहले की ऑडियो में भोजन के दूसरे भाग यानी प्राणियों में पोषण का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अमीबा में जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डाइजेशन प्रोसेस कैसी होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने घास खाने वाले पशुओं में कैसे डाइजेशन होता है वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम 2.4 टॉपिक और 2.5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं 2.4 मानव में पाचन। ठीक है, मानव यानी ह्यूमन बीइंग, हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे अंदर पाचन कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे। तो पेज नंबर 15 पेज नंबर पर हम देखेंगे एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक मानव बना है, एक मानव आकृति बनी हुई है और कुछ अंगों के नाम दिए गए हैं। वह पूरा का पूरा पाचन तंत्र है जो हम सबके अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चित्र को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, आहार नाल में इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। यानी हम खाना कहाँ से अंदर लेते हैं, मुंह से, मुख से अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन करते हैं, आहार नाल में इसे पचाते हैं। आहार नाल यानी इंटेस्टाइन्स, ठीक है, वहां इसको पचाते हैं, फिर उसका उपयोग या यूटिलाइजेशन करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, यानी वह भाग जो पचा नहीं है वह हम मल के रूप में बाहर निकालते हैं। जो हम सुबह सुबह शौच क्रिया करते हैं वह क्या है, हमारा मल है। हम मल से शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, उसे निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है, मतलब मल निकल कैसे जाता है, क्या हम जो खाते हैं उसके साथ अंदर क्या होता है, यही सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यह नली आहार नाल कहलाती है। देखो बच्चों, आप सभी मानव हैं, आप खुद से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मुख से हमने भोजन ग्रहण किया और वह आहार नली तक पहुंचता है। कैसे कैसे पहुंचता है ये हम अभी बताएंगे, और गुदा से ये निष्कासित होता है, यानी एनस से ये निष्कासित होता है, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भोजन का पाचन मानव शरीर में कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम इस चित्र पर आएंगे, 2.3 चित्र दिया है उस पे आइए। सबसे पहले क्या दिखाया है, मुंह, हमारा ओरल कैविटी, ये मुंह। उसके बाद एक पाइप जैसा बना हुआ है जिसे कहते हैं ग्रसिका, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एसोफेगस। ग्रसिका जो ग्रास को अंदर लेके जाती है। ग्रसिका क्यों कहा है और ग्रास क्या होता है, देखिए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह एक अलग रूप में होता है, फिर हम उसे मुंह में दांतों द्वारा चर्वण करके, चबा करके अंदर लेके जाते हैं, तो वो ग्रास रूप में बन जाता है, बोलस, इसीलिए इसका नाम ग्रसिका रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला दिया है यकृत, जिसे हम लिवर कहते हैं। अगला बनाया है सी शेप, एक सी जैसे आकार की आकृति आमाशय, यही है हमारा स्टमक या पेट। अगला उसके यकृत के नीचे है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसके बाद बड़ा सा डिजाइन बना हुआ है एक, वो है बृहद आंत्र यानी बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी के बराबर में एक अंग दिया है अपेंडिक्स, ठीक। और सबसे नीचे जो इसमें लिखा नहीं है वह है आपका गुदा भाग यानी एनस, ठीक है। अब आइए अगले पेज पर जहां पर हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। सभी को चित्र 2.3 कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस करना है, तभी ये हमको याद होगा। पाचन तंत्र मनुष्य की आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला मुख गुहिका ओरल कैविटी, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका एसोफेगस, तीसरा आमाशय या स्टमक, चौथा क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत पांचवा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, छठा है मलद्वार एवं गुदा, जो डायग्राम में नहीं बनाया वो छठा यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। यही आहार नाल क्या कहलाती है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, ठीक है। विभिन्न घटक यानी जो भोजन के अवयव में हमने पढ़े थे आठों अवयव, ठीक है, उनका अलग अलग पाचन होता है अलग अलग अंगों में, ठीक है। और पूरा मुख गुहिका से लेकर गुदा मार्ग तक, गुदा तक पूरे को हम पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड जो मुंह में होते हैं, जो हमारा सलाइवा थूक बनाते हैं, अग्नाशय यकृत आदि पाचक रस स्रावित करती हैं, ठीक है। ये सारी तीन चीजें पाचक रस का स्रवण करती हैं या सिक्रीट करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। क्या करते हैं ये, सरल रूप में बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, कौन, ये सलाइवरी जूसेस या फिर डाइजेस्टिव जूसेस, तीन जगहों से निकलते हैं, एक लार से, लार ग्रंथि से, दूसरा यकृत से, तीसरा अग्न्याशय से, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाचक रस क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं, ये याद रखना है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। यानी हम एक एक करके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि वहां वहां पर क्या क्या डाइजेस्ट होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, मुख गुहिका से यानी ओरल कैविटी से, ठीक। यहां से हम खाना मुंह में अंदर डालते हैं, सबको मालूम है। तो पढ़िए क्या लिखा है पेज नंबर 16 पर। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। मुख गुहिका में क्या होते हैं बच्चों, दांत और क्या है, एक जीभ है टंग। तो हम अब पहले दांतों का डायग्राम देख सकते हैं, चित्र दे रखा है 2.4 दांत, दांत व्यवस्था का चित्र। तो ये पूरा ऊपरी जबड़ा दिया है और एक निचला जबड़ा दिया है। आप सभी की थोड़े दांत अभी कम होंगे जो 18 साल के बाद पूरे हो जाते हैं, 32 दांत, ठीक है। लेकिन मेन दांत आप सबके अंदर हैं। पहला साइड वाले डायग्राम में चवर्णक या मोलर्स, दाढ़ जिसको हम कहते हैं। फिर है अग्रचवर्णक या प्री मोलार्स, जो मोलार्स से पहले है, दाढ़ से आगे, ठीक है। फिर है रधनक, जो थोड़े पहने पहने से दांत हैं आपके, ऊपर भी नीचे भी, दो दो हैं दोनों तरफ। रधनक यानी कैनाइंस, इंग्लिश में कैनाइंस कहते हैं। चौथे हैं कृतक या इंसीजर्स, जो काटने का काम करते हैं, वह भी चार हैं, ठीक। क्या सभी दांत एक जैसे दिखते हैं? दांतों की बनावट में क्या अंतर है? क्या इनके कार्यों में भी अंतर है? अब आप खुद ही सोचिए, आप अपने दांतों को खुद देखिए। सारे दांत एक जैसे दिखाई नहीं देते, इनकी बनावट भी अलग अलग है और इनके कार्य में भी अलग अलग बदलाव आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज की शेप अलग है, उसका जो डिजाइन है वो अलग है, तो उसका कार्य भी अलग होगा। अब आप अपना मुंह खोलकर शीशे में देखिए, विभिन्न प्रकार के दांतों को पहचानिए, इनकी संख्या मालूम कीजिए, उन पर उंगली घुमाकर उनका सतह सरफेस देखने का प्रयास कीजिए। आप द्वारा पता लगाई गई जानकारी को अब आप सारणी से मिलाइए। ये आपकी होमवर्क है, आपको खुद से करना है। घर जाकर आप अपना शीशे में मुंह देखिए, अपने दांतों को गिनिए और उनको उंगली डालकर उनका डिजाइन पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपके अंदर कौन कौन से दांत हैं। पेज नंबर 17 पर देखेंगे सारणी 2.1, दांतों के प्रकार, उनकी संख्या एवं उनकी मुख में उपस्थिति। तो पहले है कृतक, इंसीजर्स, ये ऊपरी जबड़े में चार हैं और निचले जबड़े में भी चार हैं, ठीक। योग एवं विशेषता, 8 धारदार, ये धारीदार होते हैं, तो यह भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जब हम सेब खाते हैं तो सबसे पहले ये नीचे वाले दांतों को उसमें डालते हैं और ऊपर वाले दांत से उसे खींच के टुकड़ा हम निकालते हैं, तो यह भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगली है रधनक, यह है कैनाइंस, इनकी संख्या दोनों नीचे और ऊपर दो दो है, चार है। ये चार नुकीले होते हैं, एकदम खड़े, जानवरों के और भी बड़े होते हैं, जैसे कुत्ते के जो दांत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। इनका काम होता है चीरना या फाड़ना, कुत्तों में, मांसाहारी पशुओं में ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तीसरा है अग्रचवर्णक, प्रीमोलार्स, ये दोनों ऊपर नीचे चार चार की संख्या में है, इनका काम है, ये भी खुरदरे होते हैं, परंतु यह हमारे चबाने में सहायता करते हैं। जब भी हम भोजन खाते हैं तो उसे पीछे की तरफ ले जाते हैं और चबाते हैं, ठीक है। आखिरी है चवर्णक, यह 6-6 होते हैं, पर आपके अभी 6 नहीं होंगे, आपके 1-1 होंगे, तो यह खुरदरे होते हैं और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मिठाइयां और दंत 6 बताया गया है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं, जिसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं, जिसके कारण यह दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। क्या होता है ये दंत क्षय? यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है, अथवा चरम अवस्था में टूटकर यह दांत गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन? चॉकलेट, ठंडा पानी, जैसे कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक या मिठाइयाँ, यह सब इन कार्यों को कराने में उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं ये वाली बात, 2 टाइम हमें, एक सुबह उठकर और एक रात को सोते समय भोजन से बाद ब्रश अवश्य करना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो दातुन कीजिए, वह भी बहुत अच्छा होता है। और खाने के तुरंत बाद कुल्ला जरूर कीजिए, इससे आपके दांत बचे रहेंगे। और मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु कभी नहीं डालनी चाहिए। अब चित्र 2.5 पे आपको जीभ दी है जिसपे स्वाद कलिकाएं बनी हुई हैं, टेस्ट बर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 18। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्त्रावित करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो ग्रंथियां लार निकालकर भोजन में मिलाती हैं, है ना, गीला गीला कर देती हैं। लार मिलने से भोजन लुगदीनुमा एवं लसलसा चिपचिपासा हो जाता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो चुका है। कहाँ पे? मुंह में। सबसे पहले डाइजेशन पाचन मुंह में शुरू होता है। लसलसे भोजन को निगलने में आसानी होती है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारी टंग, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप चलाकर देख सकते हैं अपनी जीभ को, आगे से घूमेगी, पीछे से फिक्स है। क्या आपको जीभ के कार्य पता है? हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। खुद देख लीजिए, जीभ को पकड़िए और बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं बोल पाएंगे। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं, जिनकी सहायता से हमें अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं। अब आ जाइए भोजन नली या कृसिका, जिसको हमने इंग्लिश में क्या कहा था? इसोफेगस। मुख गुहिका में भोजन कृसिका भी पाई जाती है, ठीक है। मुख गुहिका से ही शुरू होती है और अंदर जाती है वो पाइप की तरह। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर आता है। जब हम सटकते हैं तो भोजन उसमें आ जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, है ना, फलस्वरूप उल्टी हो जाती है और भोजन बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, कभी आपको उल्टी हुई होगी जब भोजन के बाद आपने वमन या वॉमिटिंग की हो, अच्छा, जिसके कारण को सोचिए कि आपको क्यों ऐसा हुआ था। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर डिस्कशन कीजिए, ठीक है। आमाशय मोटी भित्ति, अब आमाशय की बात करेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है, एक बैग जैसा है, जिसकी भित्ति लाइनिंग मोटी है। कैसी है? मोटी। यह चपटा और यू आकृति का होता है, यू या फिर सी शेप्ड भी होता है, दोनों में से जो भी आपको याद रहे, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छूद्रांत छोटी आंत में खुलता है। एक बात याद रखिए, हम छोटी आंत और बड़ी आंत से क्या समझते हैं? छोटी आंत सिर्फ डायामीटर में छोटी है, यानी कि उसका नाप गोलाई कम है, इसलिए उसका नाम छोटी आंत है, जबकि उसका माप साइज लेंथ बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख बड़ा होता है लेकिन उसकी लंबाई छोटी होती है। तो हमने जिनका नाम रखा है वो उनके मुख के डायामीटर के अनुसार है, ना कि उनकी लंबाई के अनुसार। ये विपरीत है, हम आमाशय पढ़ रहे हैं, ठीक है। आमाशय का एक भाग तो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रसिका से, और निचला भाग जुड़ा हुआ है छूद्रांत से, ठीक है। तो भोजन आमाशय के बाद कहाँ आएगा? छूद्रांत में। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आमाशय की आंतरिक सतह में क्या क्या होता है। श्लेष्मा यानी म्यूकस, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप ही सोचिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में रहता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि आमाशय की जो आंतरिक सतह है, इनर लाइनिंग है, वहां पर म्यूकस की गाढ़ी सी लेयर है, ठीक है, श्लेष्मा की गाढ़ी सी लेयर है जो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो आमाशय में क्या है? श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहीं पे पाचक रस या डाइजेस्टिव जूसेस भी बनते हैं, निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यहाँ पर कार्य। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, माध्यम यानी मीडियम, मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आमाशय में क्या कार्य है। ठीक है, पाचक रस, जठर रस, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और नीचे आमाशय का एक छोटा सा चित्र दिया है, उस सबको सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 19। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत, छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 6 से 8 मीटर लंबी है, देखिए कितनी बड़ी है। अत्यधिक कुंडलिक नहीं है, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। कहाँ से? अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ हमने पाचन तंत्र का चित्र देखा था, वहाँ यकृत बना हुआ था और अग्नाशय बना हुआ था, यानी गॉल ब्लैडर। तो वहाँ अग्नाशय यानी पैनक्रियास, ठीक है, गॉल ब्लैडर भी वहाँ बना हुआ था। तो यहाँ से यह पाचक रस को प्राप्त करती है, इसीलिए बना हुआ था डायग्राम में। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। यकृत कैसा होता है, अब बात करेंगे। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि या ग्लैंड होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि बताती है। कौन सी? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, यह पित्त रस स्त्रावित करती है। क्या क्या स्त्रावित करती है? पित्त रस, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। और वो थैली क्या है? हमारा गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो यह क्या बना रहा है? पित्त। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो हम फैट्स नहीं खा पाएंगे, जैसे तेल, घी, बटर, ये सब। इनको कौन पचाने में सहायता प्रदान करता है? लिवर और गॉल ब्लैडर। लिवर क्या देता है? यकृत क्या सिक्रीट करता है? पित्त। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये पत्ती के आकार की है, ठीक है, हल्के पीले रंग की है। अग्नाशिक रस, पैनक्रियाटिक जूस, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर यह क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। किस पे कार्य करता है ये? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर। अग्नाशय से जो रस निकलता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, ठीक है, और उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ पर क्या होता है और कौन सा जटिल पदार्थ किस जगह पे सरल रूप में परिवर्तित होता है। यही चीज याद रखनी है। क्षुद्रांत में अवशोषण, अगला टॉपिक इसी में। देखिए, एक क्षुद्रांत का चित्र भी दिया है, कितनी बड़ी है और कैसे पड़ी हुई है। 4 से 8 मीटर की होती है। पचा हुआ भोजन अवशोषित या एब्जॉर्ब होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है या फिर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं या एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन ऑफ फूड कहा गया है इंग्लिश में। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है या ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यहाँ कौन से जटिल पदार्थ बनते हैं, हमने पढ़े हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो नई जो चीज किसी को डिफाइन करती है उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मिलती है? एनर्जी। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, वो लास्ट में बड़ी आंत में जाता है। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन हुआ वह कहाँ हो गया? छोटी आंत में, और वहीं से वो ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है। बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत, इसका भी एक चित्र दिया है 2.8 पे, छोटी सी है पर आकार बड़ा है। बृहदान्त्र शूद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है एवं छोटी होती है। यही बात याद रखनी है, यहीं पे सब गलती करते हैं। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। कुछ लवण यहाँ पे मतलब है जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब होती हैं। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में यानी रेक्टम में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा यानी एनस, इसे निष्कासन कहते हैं। तो ये हुआ मानव में पाचन क्रिया या डाइजेशन। अब अगले पेज पर दस्त के बारे में बताया है, उसको पढ़ते हैं। दस्त सब जानते हैं, दस्त क्या होता है? लूज मोशन, बहुत परेशानी होती है इसमें। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। ये सबको हुआ है, सब इसको जानते हैं। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता, ये फूड पॉइजनिंग अथवा अपच, इनडाइजेशन के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह स्थिति सामान्य है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए और ले जाने से पहले उसे तुरंत उसके शरीर में लवण की पूर्ति करने के लिए उबले हुए पानी को ठंडा कीजिए और उसमें एक चुटकी लवण यानी नमक और एक चम्मच चीनी घोलकर उसे पिला दीजिए। नहीं तो बाजार में इलेक्ट्रॉल मिलता है, वह उसको दे दीजिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं, जो सरकारी अस्पतालों से भी मिल जाता है। अब आप समझ गए हैं कि पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहे इसके लिए हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जिसको हम अगले ऑडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।